يا بني آدم خذوا زینت کو مند کلی مسجد، اے بنی آدم اب ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہاں پھر دیکھیے مذہبی طبقے پہ ایک تنقید ہے. کیا تنقید ہے؟ کہ نماز کے وقت صاف ستھرے کپڑے پہنو. میں ایک ایسی کوٹیشن پڑھ رہی تھی جو میں یہاں بیان نہیں کر سکتی، جس میں کچھ لوگوں کا دوسرے مذاہب کا نام آتا ہے، اس لیے میں لینا نہیں چاہتی، ہمارا یہ مقصد نہیں، لیکن اس میں جو گندی اور قباحت کی چیزیں تھیں، تین تین سال تک وہ لوگ نہاتے نہیں تھے اور غسل خانے وہاں مجائز نہیں ہیں اور کیا کچھ تھا اس میں. تو میں اس ایک آرٹیکل کو پڑھ رہی تھی تو میں کہہ رہی تھی اسلام کتنی بڑی نعمت ہے. مسلمانوں نے یورپ کو واش روم، ٹوائلٹ اور یہ جو شاور ہے نا جس کو حمام کہتے ہیں، اس سے متعارف کرایا. یہ جائز نہیں تھے. ایک ایسا دور یورپ میں گزرا ہے، سیاہ دور تھا، کہ سارے حمام توڑ دیے گئے. کہتے تھے مسلمانوں کی یاد آتی ہے. ان کے اپنے بادشاہ اور ان کی اپنی ملکاؤں نے قسمیں کھائی تھی کہ جب تک فلاں ملک فتح نہیں ہوتا میں نہاؤں گی نہیں. 3 سال تک وہ عورت میں نام نہیں لینا چاہتی، وہ نہائی نہیں، آخر مر گئی اپنی گندگی سے. کسی نے کہا میں اپنے انڈر گارمنٹس نہیں اتاروں گی جب تک یہ نہیں کام ہوگا، اسی کے تعفن سے مر گئی. اسلام کہتے صاف ستھرے رہو. یہاں زینت سے مراد کپڑے بھی ہیں، کہ وہ ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، کہا کپڑے پہن کر جاؤ. لہٰذا خاص طور پہ جب مسجد میں جائیں، خاص طور پہ یہاں آتے ہیں آپ، کہیں بھی جہاں اجتماعیت ہو، جہاں دوسرے لوگ، ایک سیکنڈ اپنے ابائے کو سمیل تو کیجئے. جن کپڑوں میں گھر میں کھانا پکا رہے ہیں، واللہ ہی کبھی اس کپڑوں میں مسجد میں نہ جائیں. ساتھ بیٹھی عورت بیچاری تراویح نہیں پڑھ سکے گی. لہسن اور ادرک اور پیاز کھانے والے کو مسجد میں آنے سے روک دیا. سگریٹ پینے والا دوسروں کو کتنا دکھ دیتا ہوگا. تو یہاں بولا کہ اپنی عبادت کے موقع پہ زینت کو رکھو. کیوں؟ دیکھیں فریش ہوتے انسان. آپ یہاں اگر شاور لے کے نہیں آتے، مجھے یقین ہے بیچ میں ایک آدھ دفعہ ضرور سوتے ہوں گے. صاف ستھرا ڈھیلا ڈالا کپڑا پہن کر آئے اس نیت سے کہ یہاں میں فریش رہوں، مجھے نیند نہ آئے، مجھے اپنے سے بون آتی رہے، مجھے گھبراہٹ نہ ہو. اور ساتھ ہی کہا کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو. کھاؤ، منع نہیں ہے، افطاری میں کھاؤ، پر اتنا نہ کھاؤ کہ اندر پہلی منزل دوسری تیسری منزل تک فل کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اے نبی ان سے کہو، کس نے اللہ کی زینت کو حرام قرار دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا؟ ہائی لائٹ کریں اس سے اللہ کو. ان مذہبی رہنماؤں پہ جو لباس کی سختی کے نام پہ یا زینت کے ترک کرنے پہ حلال چیزوں کو بھی پیچھے کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ صاف ستھرے رہتے ہیں، آپ آرائش کرتے ہیں، تو آپ میں نرمی آتی ہے. آپ ازما کے دیکھ لیجئے، جو لوگ ہر وقت یہ منع وہ حرام، یہ نہیں ٹھیک وہ نہیں ٹھیک، ان کے اندر سختی ہوگی، تنقیدی ہوں گے. پھر ذرا کسی کو اچھا پہنا دیکھیں گے، کہیں گے اللہ پوچھے گا، اللہ ان کو دیکھیے گا، آخرت میں جواب دے گا. ایک سسٹر کی مجھے بات یاد آتی، کسی نے ان کے سامنے بڑی خوبصورت باسکٹ پیش کی، گریپس اور جیسے فریش فروٹس ہوتے ہیں نا، کیا وہ ریڈ اسٹرابریز اور اچھے فروٹس تھے. تو انہوں نے ان کے سامنے کہا، کہتی توبہ توبہ، ہم تو جا کے جنت میں کھائیں گے، اتنا اسراف اچھا نہیں. تو ساری اسٹرابریاں پھینک دیں، سارا انگور کافر کھا جائیں. کس نے حرام کیا؟ کرو کیا، کھاؤ پیو پہنو، خوش رہو، اچھے رہو. دیکھیں موڈ بدل جاتا ہے، مزاج بدل جاتا ہے. آپ جب بہت کرنکی ہو نا، آپ اٹھے نہائیں تو صاف ستھرا اچھا سا جوڑا پہنے، آپ خوش ہو جائیں گے. ایک نان مسلم سسٹر مسلم ہوئی تو انہوں نے مجھے ایک سال یہ بات سنائی، شاید میں نے پچھلے سال بھی سنائی تھی. تو جب ان سے ہم بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، سنائیں جی اب کیا کرتی تھی، کہتی میں تو صبح اٹھ کے سب تو پہلے شاور لیتی، پھر سب تو اچھا پنجابی بولتی ہیں کڑک قسم کی. خلاصہ کیا تھا، کہتی صبح اٹھتی ہوں سب سے پہلے، میں اپنے ویکینڈ کا بتا رہی تھی، سنڈے کے دن کا. تو کہتی کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے شاور لیتے ہیں، پھر صاف ستھرا نیا جوڑا پہن کے پھر میں خوب میک اپ کرتی ہوں، پھر میں اپنے ہسبینڈ کو بھی کہتی ہوں تم بھی کرو. کہتی پھر ہم فوٹ میں چھکتے ہیں اپنی پھر ہم دونوں ذرا کافی فوٹ میں چھک چھک کے، کہتی اس کے بعد میں چولہا کھولتی ہوں کہ اب کھانا پکاؤں. کہتی میں سارا دن بڑی خوش رہتی. تو مجھے کہتی دیدی میں تو میک اپ اس لیے کرتی ہوں کہ پھر میں فریش ہوتی ہوں، جب تک میں میک اپ نہ کروں میری آنکھیں نہیں کھلتی. تب دیکھیں وہ گھر میں اگر اپنے مرد کے ساتھ فوٹو چھک رہی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو خدا کے لیے اپنے گھر والوں پہ بھی رحم کریں. مجھے تو کچھ مردوں پہ رحم آتا ہے، یہ کیسی عورت اس کو ملی ہے، ہر وقت اس کے دماغ پہ سوار ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس نے حرام کیا ہے، کون تمہیں یہ فتویٰ دیتا ہے کہ تم یہ نہ کرو وہ نہ کرو، کرنے والی چیزیں اس کو دیکھو اور وہ کیا ہے. فرمایا اے نبی ان سے کہو، کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے. بات کریں ہم، کیا دنیا میں یہ سارا ریشم اللہ نے نان مسلمز کے لیے پیدا کیا ہے؟ ریشم کا کیڑا اللہ نے آپ کے میرے لیے پیدا کیا، آپ کہتے ہیں ہم ریشم پہنے، توبہ توبہ، اللہ ان کو پوچھے گا؟ پھر کیوں پوچھے گا، ورنہ کیا ہوگا، اللہ کہتے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے ان کے طفیل غیر مسلم بھی لے رہے ہیں، اصل میں تو یہ مومنوں کے لیے تھی، مگر آگے جا کے کیا ہوگا، اور قیامت کے روز تو خالصتاً ان کے لیے ہوں گی، یعنی آخرت میں اللہ پھر کسی دوسروں کو نہیں دے گا. اسی طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں. اچھا، اس بات کے بعد آپ کو اپنے گھر کا صبح کا منظر نہیں یاد آ گیا؟ روتی صورتیں، شکلیں کیسی بنی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں صبح اٹھ کے ہم کیسے خوفناک صورت میں اپنے گھر والوں کے سامنے جاتے ہیں. تو صبح اٹھ کے کنگھی کیا کریں، پہلے منہ دھویا کریں، کوئی عطر لگا لیا کریں، پھر ناشتے کا میاں کا پوچھا کریں، ورنہ وہ جو صبح اٹھتے ہی موڈ خراب ہوتا ہے اس کی وجہ ہو سکتا ہے میرا حال لیا بھی ہو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اچھے طریقے سے ان ساری چیزوں پہ عمل کرنے والا بنا دے. ہاں، اب حرام کیا ہے؟ یہ تو حرام نہیں تھا جو آج ہم نے دین کے نام پہ آج تک سنا ہوا ہے. کسی نے کہا کہ کیا سارے دولت والے آگ میں جائیں گے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے فلان جگہ ایک درس میں گئے تھے تو وہاں کوئی درس والی تھی تو وہ تو اتنی باتیں سنا رہی، اس نے مجھے سنائی تو میں کانپ گئی. میں نے کہا میں نے نہیں کبھی یہ سنائی، نہ میں نے یہ پڑھی ہے، نہ میں نے کبھی ایسے کیا. کہتی وہ تو ایسے ایسے لوگوں کو سنا رہی تھی، یہ چتکبریاں اور کبوتریاں اور پرکٹیاں، انہوں نے آگ میں جانا ہے. تو اس کو یہ کانسیپٹ ایک دین کی محفل سے ملا کہ سارے اچھے کپڑے پہننے والے آگ میں جائیں گے، بڑی بڑی گاڑیوں والے سیدھے جہنم کے دروازے پہ اتریں گے، اور بڑے بڑے گھروں میں رہنے والوں نے دیکھنا ذرا کہاں جا کے چلنا ہے. نعوذ باللہ. حضرت ابو بکر صدیق امیر ترین شخص تھے، عبد الرحمان بن عوف، حضرت عثمان غنی. اگر پیسہ مسلمان کے پاس نہیں ہوگا کس کے پاس ہوگا؟ فرق صرف اتنا ہے کہ مسلمان کا ایکسپوز کم ہوتا ہے، اس کا لگتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، اللہ کے رستوں میں بھی دیتا ہے. کافر کے پاس ہوتا کچھ بھی نہیں، دوسرے کے گھر پہ اپنے نام کی پلیٹ لگا لیتا ہے. تو ضرورت اس بات کی کہ دین کی انٹینسٹی کو نہ کم زیادہ کیا جائے. مجھے یہاں بیٹھ کے کوئی حق نہیں ہے کہ میں دین کو ڈائلیوٹ کر دوں یا میں ذرا اور ہی کنسنٹریٹ کروں. دعا کیجئے جیسا دین ہے ویسا پیش کریں، کوئی نیک سمجھتا تو سمجھے، نہیں سمجھتا تو نہ سمجھے. لوگوں کو دکھاوے کے لیے بھی بعض لوگوں نے اپنا جینا حرام کیا ہوتا ہے، نہیں پھر لوگ کیا کہیں گے؟ اچھا واقعی لوگ بھی ایسے ہیں، مولوی صاحب کو ذرا کسی ریسٹورینٹ کے باہر گاڑی دیکھ لگے، مولوی صاحب ہوٹل میں کھانا کھا کے دیکھ، یہ مولوی صاحب ہو کے دیکھو باہر کھانا کھاتے ہیں. وہ اپنی بیگم کے لیے بوتیک میں جوڑا لے رہے تھے، مولوی صاحب ان کو اللہ نے پوچھنا. بھائی مولوی صاحب نے کب کہا کہ آپ اپنی بیگم کو بوتیک کا جوڑا نہیں لے کے دے سکتے؟ تو یہ تعصب ہے. اصل میں سچ بات ہے، ہم آج دین کو غریب دیکھنا چاہتے ہیں، ٹوٹا پھوٹا پرانا، کہتے بڑے نیک ہیں. ذرا اچھا دین ہو کہتے یہ اسپانسر کون کرتا ہے، یہ پیسے کون دیتا ہے، یہ کوئی نہ کوئی ان کو ضرور دیتا ہوگا، یہ فلاں کے ایجنٹ ہے فلاں کے. ہمارا دین سب سے امیر ہے، ہمارے دین کو سب سے زیادہ حق ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے پیش کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی ان سے کہو میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں، ہاں اس کی اب لسٹ بنائیے. اب اس کی زد میں اپنے کپڑوں کو بھی دیکھیں، شادیوں کو دیکھیں، فنکشنز کو دیکھیں، ہم اپنے اٹھنے بیٹھنے، ہوٹلنگ، باہر کو دیکھیں، یہ ہے تو پھر خطرے کی بات ہے. نمبر ایک، وہ تو ہیں بے شرمی کے کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ، اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی ایسے کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سنت نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے. اور اللہ تعالی ہمیں آپ کو ان ساری چیزوں سے بچائے. ہر قوم کے لیے ایک مہلت کی مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پہنچتی ہے تو ایک گھڑی کی کمی بیشی نہیں ہوتی. اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف صاف بتا دی کہ اے بنی آدم یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کرے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. دعا کرے اللہ ہمیں نافرمانیوں سے بچائیں، اچھے پہن، اچھے اوڑھ، اچھا کھا کے نافرمانی نہ کریں، خوش ہوں، راضی ہوں، اور اللہ ہمیں اپنے رویوں کی اصلاح کی توفیق دے. آپ دیکھیں ڈپریشن فری زندگی کا وعدہ ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اس کے برعکس اب انتقام بھی بڑا سخت ہے. والذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور اس کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. 3 سیکنڈ سوچئے، قرآن کی کس کس آیت کو جھٹلاتی ہوں، کس کس حکم پہ تکبر کرتی ہوں؟ ہاں میں نہیں یہ کر سکتی. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن کچھ آیتوں کے بارے میں ان کا حتمی فیصلہ ہے اس کو نہیں ماننا، جو مرضی کر لو. اللہ تعالیٰ اس رویے سے بچا کے رکھے. آخر اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے؟ ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے. آئیے ہم سب سوچتے ہیں اپنی موت کو. उस वक्त वो इनसे पूछेंगे कि बताओ कहाँ है तुम्हारे माबूद जिनको तुम अल्लाह की बजाय पुकारते थे। वो कहेंगे वो सब हमसे गुम हो गए, और वो खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे कि हम वाकई मुनकरे हक थे। अल्लाह फरमाएगा जाओ तुम भी इसी जहन्नुम में चले जाओ जिसमें तुमसे पहले गुजरे हुए गिरोह हुए जिन और इंस जा चुके। हर गिरोह जब जहन्नुम में दाखिल होगा तो अपने से पहले गिरोह पर लानत करता हुआ दाखिल होगा, हत्ता कि जब सब वहां जमा हो जाएंगे तो फिर हर बात में आने वाला गिरोह पहले गिरोह के हक में कहेगा रब ये वो लोग थे जिन्होंने हमको गुमराह किया। देखिए आंखें बंद करके लोगों के फैशंस और लोगों के मॉडल्स को नहीं अपनाना, क्यों? ये असल में आयतें पीछे उसी टेक्स्ट में चल रही हैं कि जब किसी दूसरे को देखकर आप भी बेसोचे समझे वही कुछ करने लग जाते हैं, जहन्नुम में जाकर वहां पहचान कर कहेंगे इन्होंने हमें इस गलत रिवाज पे डाला था। मैं अक्सर सोचती हूँ कि ये जो तंग पजामे 2-3 साल से चले हुए हैं, समझ गया ना, किसी ने तो पहली दफा पहन के बाहर आने की जरूरत की थी ना। वल्लाही मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि आज से 15-20 साल पहले सिर्फ 7-2 साल की छोटी बच्चियां लेगिंग के नाम पे ये पहनती थी, और हमारे घरों के बड़े उस वक्त भी उन माओं को डांटते थे कि इसको ये ना पहनाया करो, अंदर उनके पैंपर डाल के उनको लेगिंग पहना देती थी। साल की बच्ची जू ही बच्ची चलने लगे कहते थे छोड़ो इसको ये पहना बदल करो। आज बड़ी बड़ी खवातीन और बड़े बड़े जिस्म की औरतें जब वो पहन के निकलती है मैं सोचती हूँ अल्लाह उसका नाम तो बता जिस औरत ने सबसे पहले ये फैशन मुसलमानों में निकाला था। और आज अकल नहीं आती, सोच नहीं आती, कभी नहीं इंसान सोचता जिस्म का एक एक अंग गिना जाता है। बेटी का बाप देख रहा है, बहन का भाई देख रहा है, सारी दुनिया देखती है, बहन भाई देख लेंगे तो क्या बात होगी। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए इस हसरत से बचाए कि जिनको देखकर कहेंगे बेसोचे समझे हम करेंगे। और मुझे बच्चियों पे हैरत नहीं होती, मुझे उन माओं पे होती है जो अपनी बच्चियों को खरीद के पहनाती हैं। मैंने खुद माओं को खरीदते देखा है, मेरा दिल करता है कि मैं उनसे पूछूं तो सही कि आप इसको भी ना पहनाएं तो ऐसे भी जाने दें, अपनी जवान बच्ची को बाहर जाने देंगे तो ये छिलके के ऊपर एक और छिलका पहनाकर आपने क्या बड़ी नेकी कर दी। दुआ कीजिए अल्लाह ताला आंखें खोल दे। क्या कहेंगे वो लोग, ए रब ये वो लोग थे जिन्होंने हमको गुमराह किया लिहाजा इन्हें आग का दोहरा अजाब दे। जवाब में इरशाद होगा हर एक के लिए दोहरा अजाब ही है मगर तुम जानते नहीं हो। और पहला गिरोह दूसरे गिरोह से कहेगा हम अगर काबिल इल्जाम थे तो तुम्ही को हम पर कौन सी फजीलत हासिल थी, अब अपनी कमाई के नतीजे में अजाब का मजा चखो। यानी हमने को मजबूर तो नहीं किया था कि तुम जरूर हमारे नक्शे कदम पर चलो। यकीन जानो जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया और इनके मुकाबले में सरकशी की है, सरकशी तो तौबा करते हैं हम अभी इंशाल्लाह, इनके लिए आसमान के दरवाजे हरगिज न खोले जाएंगे। क्यों? ना इनकी दुआओं की कबूलियत के लिए आसमान के दरवाजे खोलेंगे, ना इनकी रूहों के जाने के लिए आसमान के दरवाजे खुले जाएंगे। इन आयत पे लेक्चर है जर्नी ऑफ द सोल, मरने के बाद हमारी रूह के साथ क्या होता है, इन आयतों में उसका बहुत खूबसूरत तरीके से नक्शा है। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं अगर तुम मुखालफतें करके दुनिया से जाओगे आसमान से रूह को पटक कर जमीन पे फेंका जाएगा कि ला तुफत्तहु लहुम अबवाब अस्समाए, इनके लिए आसमानों के दरवाजे नहीं खुलेंगे, जैसे आप हर एक के लिए अपने घर के दरवाजे तो नहीं खोलते। इनका जन्नत में जाना इतना ही नामुमकिन है जितना सुई के नाके से ऊंट का गुजरना, यानी जिसको आप लिखते हैं क्वाइट इम्पॉसिबल। नामुमकिन चीज के लिए अरब लोग ये बात करते थे, और यहाँ नोट करें काफिरों की बात नहीं है, मुसलमान होकर अल्लाह की आयतों को ना मानने वाले मुजरिमों को हमारे यहाँ ऐसा ही बदला मिला करता है। इनके लिए तो जहन्नुम का बिछोना होगा और जहन्नुम ही का ओढ़ना, यानी क्विल्ट भी आग की और मैट्रेस भी आग का। अल्लाह हम सबको बचाए, दिल की गहराई से दुआ कीजिए। ये है वो जज़ा जो हम जालिमों को दिया करते हैं बखिलाफ इसके जिन लोगों ने हमारी आयतों को मान लिया। अल्लाह हमें इनमें शामिल कर ले और अच्छे काम किए, अल्लाह अच्छे कामों की तौफीक दे। और इस बात में हम हर एक को इसकी इस्तेदात के मुताबिक ही जिम्मेदार ठहराते हैं, वह अहले जन्नत हैं जहां वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह हमें जन्नतियों में ले आ। इनके दिलों में एक दूसरे के खिलाफ जो कुछ कदूरत होगी से हम निकाल देंगे, जन्नत के दरवाजे पे खड़ा करके दिलों को धोया जाएगा। और मैं अपने समेत आप सबको कहती हूँ यहाँ ही इस कदूरत को निकाल दें, इस हॉल में बैठे बैठे कहें मैंने सबको माफ कर दिया, दिल में कदूरत खटप उसने ये किया मेरे खिलाफ, ऐसी अज्यूम कर लेते हैं उसने कह दिया होगा, उसने पट्टी पढ़ाई होगी, उसने मेरा हक छीन लिया। अल्लाह कहते हैं जन्नत में इस गंदे दिल के साथ चले गए, तुम तो वहां के माहौल को गंदा करोगे, क्योंकि जन्नत का असल हुसन वहां के लोग हैं, वहां की नहरें और फूल, तो वो तो बात की बात है। अगर दुनिया में आकर हम अपने दिल साफ कर ले, यकीन करें ये दुनिया जन्नत होगी। कौन सी जन्नत जिसके नीचे नहरें बहती होंगी और वो कहेंगे, हाईलाइट कर लीजिए जन्नत में जाने वालों का पहला जुमला, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा। सारी तारीफें उस जात के लिए हैं जिसने हमें ये रास्ता दिखाया। हम खुद राह ना पा सकते थे अगर अल्लाह हमारी रहनुमाई ना करता। हमारे रब के भेजे हुए रसूल वाकई हक लेकर आए थे। अलहम से वाचिर होगी जन्नत में, अलहम पे खत्म है। ईमान वाले की सारी जिंदगी अल्लाह के शुक्र में डूबी हुई जिंदगी होती है। उस वक्त निदा आएगी, ये जन्नत जिसके तुम वारिस बनाए गए हो, तुम्हें इन आमाल के बदले में मिली जो तुम करते थे। फिर याद करें उन छोटी छोटी नेकियों को, तो आज सारा दिन अपने नेकियों के छोटे छोटे मौकों को ढूंढना है ताकि जन्नत को पा सकें। अब आगे एक मंजर है जन्नत और जहन्नुम का, आप कह लीजिए कॉन्फ्रेंस कॉल है, कुछ लोग नीचे जहन्नुम में और कुछ ऊपर जन्नत में, अल्लाह ताला दोनों को बीच में बुलाकर क्या कहते हैं। फिर ये जन्नत के लोग दोजख वालों से पुकार कर कहेंगे, हमने इन सारे वादों को ठीक पाया जो हमारे रब ने हमसे किए थे। जन्नत मिल गई, जन्नत की नहरें देख ली, अल्लाह का दीदार हो गया, अल्लाह हमसे भी ये वादे पूरे कर ले। क्या तुमने भी इन बातों को ठीक पाया जो तुम्हारे रब ने किए थे? वो जवाब देंगे हाँ। तब एक पुकारने वाला इनके दरमियान पुकारेगा, अल्लाह की लानत इन जालिमों पर जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते और इसे टेढ़ा करना चाहते थे और आखिरत के मुनकर थे। दिल की गहराई से दुआ करें कि अल्लाह हमें लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकने वाला ना बना। इन दोनों गिरोहों के दरमियान एक ओट हायल होगी जिसकी बुलंदियों यानी आराफ पर कुछ लोग होंगे। ये है सूरत की वजह तस्निया। हर एक को उसके क्याफों से पहचानेंगे और जन्नत वालों से पुकार कर कहेंगे, आप इन आयतों को सुनते हो खुद को वहां ले जाएं। ये सिर्फ एज्यूम करके अपने ऊपर तारी करने वाली आयतें हैं। क्या कहेंगे, किस सलामती हो तुम पर, ये लोग जन्नत में दाखिल तो नहीं हुए मगर इसके उम्मीदवार होंगे। और जब इनकी निगाहें दोजख वालों की तरफ फिरेंगी तो कहेंगे, अरब हमें इन जालिम लोगों में शामिल ना कीजियो। पोस्टपोन रिजल्ट वाले लोग आराफ पे खड़े होंगे, लेटर ऑन उनका रिजल्ट है, अभी कुछ नहीं पता, कहीं नेकी है तो कहीं दूसरी तरफ बुराइयां भी हैं। हर गुनाह को ये सोचकर छोड़िए कि कहीं ये जन्नत से ना रोक ले, और हर नेकी को ये सोचकर कीजिए कि शायद यही नेकी है जिसने मेरा नाम जन्नत में लिखवाना है। फिर ये आराफ के लोग दोजख की चंद बड़ी बड़ी शख्सियतों को इनकी अलामतों से पहचान कर पुकारेंगे कि देख लिया तुमने, आज ना तुम्हारे जत्थे तुम्हारे किसी काम आए। मत अपनी जमात और गिरोह का फख्र करे कोई, और ना वो साजो सामान जिनको तुम बड़ी चीज समझते थे। गाड़ियां बंगले सब पीछे रह गए, जो दराहटें सब पीछे रह गई। और क्या ये अहले जन्नत वही लोग नहीं जिनके मुतालिक तुम कस्में खा खा कर कहते थे कि इनको तो अल्लाह अपनी रहमत में से कुछ ना देगा। कुछ लोगों का ख्याल है अल्लाह ने दुनिया भी हमें दी है, जन्नत भी हमें ही देगा। आज इन्हीं से कहा जाएगा, दाखिल हो जाओ जन्नत में, तुम्हारे लिए न खौफ है न रंज है। अल्लाह हमें भी वहां दाखिल कर दे। अब अगली आयतों को इस दर्द के साथ महसूस करके सुनिएगा कि आज दुनिया में कुछ कर ले, क्योंकि वहां हम मदद करना भी चाहेंगे तो नहीं कर सकेंगे। कैसे? और दोजख के लोग जन्नत वालों को पुकारेंगे, कुछ थोड़ा सा पानी हम पर डाल दो, या जो रिस्क अल्लाह ने तुम्हें दिया इसी में से कुछ फेंक दो, कोई एक अंगूर का खुशा ही फेंक दो जन्नत में से। आग में जल रहे हैं और गर्मी में जल रहे हैं और पानी मांग रहे हैं। वो जवाब देंगे कि अल्लाह ने ये दोनों चीजें इन मुनकरीन हक पर हराम कर दी। आज हम हक तलफी नहीं कर सकते कि अल्लाह की मना की चीज तुम्हें दे दें। जिन्होंने अपने दीन को खेल और तफरीख बना लिया था और जिन्हें दुनिया की जिंदगी ने फरेब में मुबतला कर रखा था, अल्लाह फरमाते आज हम भी इन्हें इसी तरह भुला देंगे जिस तरह वो उस दिन की मुलाकात को भूले रहे और हमारी आयतों का इनकार करते रहे। आप देखिए, जो लोग दुनिया में हराम में पड़े रहे उन पर जन्नत और जन्नत की नेमतें हराम हो गई। अल्लाह ताला दुनिया में हमें अपनी और दूसरों की फिक्र लगा दे। तो साथ ही देखिए कुरान का जिक्र है, क्यों गए लोग जहन्नुम में, इसलिए कि वो किताब न थामी जिसके लिए फरमाया, हम इन लोगों के पास एक ऐसी किताब लेकर आए हैं जिसको हमने इल्म की बिना पर मुफस्सल बनाया और जो ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और रहमत है। अल्लाह में इस किताब से हिदायत और रहमत लेने वाला बना दे। अब क्या ये लोग इसके सिवा किसी और बात के मुंतजर हैं कि वो इंजाम सामने आ जाए जिसकी ये किताब खबर दे रही है? जिस रोज वो इंजाम सामने आ गया तो वही लोग जिन्होंने पहले इसे नजरअंदाज कर दिया था कहेंगे, वाकई हमारे रब के रसूल हक लेकर आए थे। अब क्या फायदा? वो उर्दू में कहते हैं ना, पछताए क्या होत जब चिड़ियां चुग गई खेत। आज ये किताब दिन रात पुकारती है, नहीं सुनते, वहां कहेंगे काश हम सुन लेते। फिर क्या अब हमें कुछ सिफारशी मिलेंगे? देखिए, वक्त पे मेहनत नहीं की तो अब रिजल्ट के लिए ढूंढ रहे हैं कि कोई हमारे नंबर लगा दे जो हमारे हक में सिफारिश करें, या हमें दोबारा वापस ही भेज दिया जाए ताकि जो कुछ हम पहले करते थे इसके बजाय अब दूसरे तरीके पर काम करके दिखाएं। उन्होंने अपने आप को खसारे में डाल दिया और वो सारे झूठ जो उन्होंने तसनीफ कर रखे थे आज इनसे गुम हो गए। क्या झूठ थे? और कुछ नहीं होता, और देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? आग में जाकर देखेंगे, जहन्नुम का ईंधन बन के देखेंगे, वहां जाके कहेंगे वाकई हम जुखरुफ अलकौली गुरूरा के पीछे लगे हुए थे। दर हकीकत तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमान और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अपने तख्ते सल्तनत फिर अर्श पर जलवा फरमा हुआ, जो रात को दिन पर ढांक देता है और फिर दिन रात के पीछे दौड़ा चला आता है, जिसने सूरज और चांद और तारे पैदा किए, सब इसी के फरमान के ताबे हैं। जहां अपने लिए दुआ करें, अल्लाह हमें भी अपने हुक्मों के पीछे लगा दे। इतने बड़े सूरज चांद सितारे अगर तेरे हुक्म को मानते हैं तो मैं क्यों ना मानूं? खबरदार रहो, इसी की खल्क है और इसी का अमर है, बड़ा बाबरकत है अल्लाह, सारे जहानों का मालिक और परवरदिगार। अपने रब को पुकारो गिड़गड़ाते हुए और चुपके चुपके, यकीनन वो हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। शिर्क से बचना कौन सा? दुआ, दुआ मांगिए। देखिए, जहां कोशिशें खत्म हो जाती हैं ना, वहां दुआएं काम आती हैं। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें जन्नत के काबिल कर दे। जमीन में फसाद बर्पा न करो जबकि इसकी इसलाह हो चुकी है, और अल्लाह ही को पुकारो खौफ के साथ और तमा के साथ। अलीमान उबैन अल खौफ वर्रजा, यकीनन अल्लाह की रहमत नेक किरदार लोगों के करीब है। तो अल्लाह हमें नेक बना दे। वो अल्लाह ही है जो हवाओं को अपनी रहमत के आगे खुशखबरी लिए हुए भेजता है, फिर जब वो पानी से लदे हुए बादल उठा लेती हैं तो इन्हें किसी मुर्दा सर जमीन की तरफ हरकत देता है, वहां मीं बरसा कर इस मरी हुई जमीन से तरह तरह के फल निकालता है। देखो, इस तरह मुर्दों को हालत मौत से निकालते हैं, शायद कि तुम इस मुशाहदे से सबक लो। क्यामत के दिन एक बारिश होगी और जमीन पर जब पड़ेगी तो कब्रों में से जिस्म उगेंगे। वही इशारा है कि क्यामत के दिन भी तुम दोबारा उगोगे। जो जमीन अच्छी होती है वो अपने रब के हुक्म से खूब फल फूल लाती है, और जो जमीन खराब होती है इसे नाकिस पैदावार के सिवा कुछ नहीं होता। देखिए, बारिश फूलों की क्यारी पे पड़ेगी तो खुशबू उठेगी, कचरे के ढेर पे पड़ेगी तो बदबू होगी। इसी तरह अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, जिस तरह जमीनें दो तरह की है ना, इस तरह इंसान भी दो तरह के, यहां से लेकर अब सूरत अल अराफ के आखिर तक। अंबिया कराम के किस्से, अंबिया कराम वही इलाही की बारिश बनकर बरसे, जिन दिलों में खैर थी नबियों की पुकार पे लब्बई कहकर जमीन को सब्जा देकर चले गए, और जिनके अंदर गन था, किबर था, खुद नुमाई थी, अपनी जात को सराहना था, वो नकीदा बनकर कचरा बने। अल्लाह ने कोई ना कोई आसमानी आफत भेजी और उनको तबाह कर दिया। यहां से हम आगे अब हजरत नूह का किस्सा पढ़ेंगे। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, इस तरह हम निशानियों को बार बार पेश करते हैं इन लोगों के लिए जो शुक्र गुजार होने वाले हों। यहाँ हजरत नूह का जिक्र आ रहा है। हजरत नूह हमारे इस पारे का रोल मॉडल है, वो शख्सियत जिनको अल्लाह ने अपने काम के लिए चुना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बीच में 10 करन गुजरे, 10 सदियां कह लीजिए, लोगों में शिर्क फैल गया, शख्सियत परस्ती इस हद तक बढ़ी कि लोगों ने अपने मनपसंद बुजुर्गों के बुत बनाने शुरू कर दिए। अल्लाह ताला ने उस शिर्क की बेखुनी के लिए नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। असल नाम इनका अब्दुश्शकूर था, लेकिन अल्लाह के खौफ से खशियत से इतना रोते थे कि इनका नाम नूह पड़ गया। अल्लाह ने इनको भेजा 1000 साल से जायद की उम्र दी मौजजाना तौर पे, दिखा दिया कि अल्लाह अपने रास्तों में निकलने वालों की उम्रों में भी बरकत दे देता है। 950 साल तक तबलीग की, 40 मर्द और 40 औरतें, तकरीबन 80 के करीब लोगों के सिवा कोई ईमान नहीं लाया। हर रोज हजरत नूह निकल पड़ते पहाड़ की चोटी पे जाके, लोगों को कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन लोग आपको देखकर अपने मुंह फेर लेते, कानों में उंगलियां डाल लेते, मुंह पे कपड़े डाल लेते, आपकी आवाज सुन के भागते, आपको गालियां देते, आपको बुरा भला कहते। और ये एक दो दिन की बात नहीं, 950 साल की बात रही। 600 साल की उम्र में कहते हैं रिवायात में आता है कि कौम पे अजाब आया, उसके बाद भी अल्लाह ने इनको लंबी उम्र दी। आज मैं आप कितनी जल्दी थक जाते हैं, कभी आप सूरत नूह अकेले बैठ के पढ़ें, जरूर आपकी आंखों में आंसू आएंगे। कब? जब आपने कभी अल्लाह के दीन के लिए किसी को बुलाया और उसने दावत को कबूल ना किया हो। इन्नी दाउतु कौमी लैलम व नहारा फलम यजिदहुम दुआई इल्ला फिरारा। अल्लाह, मैंने अपनी कौम को सुबह को भी पुकारा, रात को भी पुकारा, पर मेरे पुकारने से इनके भागने में इजाफा हुआ। आज हम ओवर नाइट चेंज चाहते हैं, हम अपनी कोशिशों के दुनिया में सर्टिफिकेट चाहते हैं, तो हजरत नूह मेरे आपके लिए रोल मॉडल है। जो अल्लाह के लिए करेगा वो चलता ही जाएगा, उसको कोई परवाह नहीं। और अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे दे इस रास्ते में। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है बरादरान कौम, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं, मैं तुम्हारे हक में एक हौलनाक दिन के अजाब से डरता हूं। इसकी कौम के सरदारों ने जवाब दिया, हमको तो ये नजर आता है तुम शरीफ गुमराही में मुबतला हो। हाईलाइट करें, आज लोग कुरान पढ़ने वालों को गुमराह कहते हैं, इसी तरह नबियों को भी लोगों ने गुमराह कहा, क्योंकि लोग असल में खुद किसी और तरह के दीन पे होते हैं तो उनको सच्चा दीन गुमराही लगता है। नूह ने कहा बिरादरान कौम, देखिए प्यार देखिए कितनी मोहब्बत से कह रहे हैं, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे भाइयों, मैं किसी गुमराही में नहीं पड़ा, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ, तुम्हें अपने रब के पैगाम पहुँचाता हूँ, तुम्हारा खैर ख्वाहूँ। ये खैर ख्वाही लाएं, हम तो एक दफ़ा कह के थक जाते हैं, फिर आके कमेंट्स देते हैं, फिर नेगेटिविटी, शौकीनी, मुनाफिक हैं, काफिर हैं, दुनियादार हैं, हमें ये कहते हैं, नहीं कभी मत कहें। मैं आपको एक छोटी सी नसीहत करूं, दीन की दावत पे जो आ जाते हैं आपके कहने पे, जैसे आप आए हुए हैं, कभी इनको हल्का ना जाने, इनको ऐसे लें जैसे ये आपके बेहतरीन मेहमान हैं। इज्जत करें, प्यार करें, कदर करें, शुक्रगुजारी करें, शुक्रिया करें। लेकिन जो लोग आपकी दावत पे नहीं आते, कभी उनके लिए एक नेगेटिव जुमला ना बोले, मत सोचे कि वो मुनाफिक है, शायद पैगाम पहुंचे ही नहीं, शायद कितनी बड़ी मजबूरी ने उनको रोक दिया। नबियों का ये अखलाक था कि वो दीन की दावत देते हुए लोगों के बारे में बद राय नहीं होते थे। हम बहुत जल्दी राय देते हैं क्योंकि हम सब्र से कमजोर हैं, अल्लाह हमें सब्र दे दे और खैर ख्वाह हो जाए। देखिएगा आपके अंदर दर्द है, लोग जरूर आपकी दावत पे आएंगे, आज नहीं आता आपका बच्चा कल आएगा, आज आपकी बहन आपकी दावत पे दीन पे नहीं आई कल आएगी, आज बेटी ने नमाज नहीं पढ़ी कल पढ़ेगी। शर्त यह कि मुसलसल प्यार से इखलास के साथ उनको कहते रहें, और मुझे अल्लाह की तरफ से वो कुछ मालूम है जो तुमको मालूम नहीं। ये क्या था? कि तुम्हारी इन नाफरमानियों पर अल्लाह की पकड़ आने वाली है। क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब हुआ कि तुम्हारे पास खुद तुम्हारी अपनी कौम के एक आदमी के जरिए से तुम्हारे रब की याद दहानी आ गई ताकि तुम्हें खबरदार करे कि तुम गलत रवि से बच जाओ और तुम पर रहम किया जाए, मगर उन्होंने इसको झुठलाया। ये बदनसीबी होती है कौमों की, इतने इखलास से बुलाने वालों की भी कदर नहीं करते। आखिरकार हमने उसे और उनके साथियों को एक कश्ती में निजात दी और इन लोगों को डुबो दिया जिन्होंने हमारी आयात को झुठलाया। यकीनन वो अंधे लोग थे। क्या कौमे नूह अंधी थी? हिदायत से अंधी थी, आंखें थी पर हिदायत के रास्ते नहीं दिखते थे। अल्लाह हमें ऐसे अंधापन से बचाए। उनके बाद एक और कौम, और आद की तरफ हमने इनके भाई हूद को भेजा, उसने कहा ए बिरादराने कौम अल्लाह की बंदगी करो। आप नोट कीजिएगा, हर नबी की दावत बिल्कुल एक ही है, यकसा है, अल्लाह की तौहीद से शुरू होती है। इसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं, क्या फिर तुम गलत रवि से परहेज ना करोगे? इसकी कौम के सरदारों ने जो इसकी बात मानने से इनकार कर रहे थे जवाब में कहा, हम तो तुम्हें बेअक्ली में मुबतला समझते हैं और हमें गुमान है कि तुम झूठे हो। अपने ऊपर ले, आप किसी को दीन की दावत दें बड़े शौक से गए और अगले ने जाके आपसे कहा बड़ी बेवकूफ हैं आप और बड़ी झूठी हैं, वैसे आप रोते धोते आंसू पोंछ के चीजें उठा के आएंगे और कहेंगे मैंने नहीं आज के बच जाना, क्योंकि अपने लिए जो गई थी अपने नाम पे चोट पड़ी, फौरन पीछे आ गई। याद रखे, सिर्फ वो बंदा खड़ा रहेगा अल्लाह के रास्ते में जो अल्लाह के लिए खड़ा है। अपनी जात, अपनी किसी और फायदे के लिए जाएंगे, दो चार दिन के बाद खत्म। अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे दे। इसने कहा है बिरादरान कौम, मैं भी अकली में मुबतला नहीं हूँ, देखिए अपनी सफाई पेश कर रहे हैं, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ, तुमको अपने रब के पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारा ऐसा खैर ख्वाह हूँ जिस पर भरोसा किया जा सकता है। क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब हुआ कि तुम्हारे पास खुद तुम्हारी अपनी कौम के एक आदमी के जरिए से तुम्हारे रब की याद दहानी आ गई? ये बुरा लगता है लोगों को। देखिए जो सो रहा होता है ना, उसको सोना अच्छा लगता है। आप उठाए ना, चिढ़ेंगे आगे से, चाहे खाने के लिए सैरी पे उठाते हैं, डांट खाते हैं ना पहले, फिर खाना खिलाते हैं आप उनको। यही हाल कौमों का होता है। एक नींद का नशा होता है, एक गफलत का भी नशा होता है। तो कहते थे हमें ना उठाओ, हम नहीं उठना चाहते। भूल ना जाओ कि तुम्हारे रब ने नूह की कौम के बाद तुमको इनका जानशीन बनाया और तुम्हें खूब सेहतमंद किया। बस अल्लाह की कुदरत के करिश्मों को याद रखो, उम्मीद है कि फलाह पाओगे। अब जरा जवाब सुनिए, नबी प्यार से बात करते हैं, कौमें कैसे उखड़े हुए जवाब देती हैं। उन्होंने जवाब दिया, क्या तो हमारे पास इसलिए आया है कि हम अकेले अल्लाह ही की इबादत करें और इन्हें छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते आए। देखिए बाप दादा का नाम लेकर शिर्क करते हैं लोग। अच्छा तो ले आ वो अजाब जिसकी तू हमें धमकी देता है, अगर तू सच्चा है। उसने कहा, तुम्हारे रब की फटकार तुम पर पड़ गई और इसका गजब टूट पड़ा। क्या तुम मुझसे उन नामों पर झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं, जिनके लिए अल्लाह ने कोई सनत नाजिल नहीं की? अच्छा तो तुम भी इंतजार करो और मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। आखिरकार हमने अपनी मेहरबानी से हूद और इनके साथियों को बचा लिया और इन लोगों की जड़ काट दी जो हमारी आयतों को झुठला चुके थे और ईमान लाने वाले ना थे। दो नबियों के हालात पड़े, दोनों में कॉमन चीज चाहिए। नबियों ने अल्लाह की तरफ बुलाया, प्यार से बुलाया, हमदर्दी से बुलाया, लेकिन कौमों का जवाब गलत था। तीसरे नबी समूद कौम की तरफ भेजे गए, सालेह, और समूद की तरफ हमने इनके भाई सालेह को भेजा। उसने कहा है बिरादरान कौम, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की खुली दलील आ गई। ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे पास एक निशानी के तौर पर है, बस इसे छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में चरती फिरे। इसको किसी बुरे इरादे से हाथ न लगाना, वरना एक दर्दनाक अजाब तुम्हें आ लेगा। याद करो वो वक्त जब अल्लाह ने कौम आद के बाद तुम्हें इसका जानशीन बनाया। ये है असल में नबी का काम और दाई का काम कि नेमत का एहसास दिलाए। देखो कितनी बड़ी नेमत तुम्हें अल्लाह ने दी और तुमको जमीन में ये मंजिलत बख्शी कि आज तुम इसके हमवार मैदानों में आलीशान महल बनाते और इसके पहाड़ों को मकानात की शक्ल में तराशते हो। बस इसकी कुदरत के करिश्मों से गाफिल न हो जाओ और जमीन में फसाद बर्पा न करो। उसकी कौम के सरदारों ने जो बड़े बने हुए थे, इसको नोट कीजिएगा, हर नबी की मुखालफत इन लीड्स ने की, बड़े तबके ने, क्योंकि उनके मुफादात पे चोट पड़ती है नबियों की दावत से। कमजोर तबके के इन लोगों से जो ईमान लाए थे कहा, क्या तुम वाकई जानते हो कि सालेह अपने रब का पैगंबर है? बदगुमान कर रहे हैं उनको। उन्होंने जवाब दिया, बेशक जिस पैगाम के साथ वो भेजा गया इसे हम मानते हैं। उन बड़ाई के दावेदारों ने कहा, जिस चीज को तुमने माना हम इसके मुनकर हैं। ठिठाई है। फिर उन्होंने इस ऊंटनी को मार डाला और पूरे तमर्रुद यानी पूरे तकब्बुर के साथ अपने रब की हुक्म की खिलाफ वर्जी कर गुजरे और साले से कह दिया, इसको हाईलाइट करें, ले आ वो अजाब जिसकी तू हमें धमकी देता है अगर तू वाकई पैगंबरों में से। देखिए क्या मांग रहे हैं, अजाब की बजाय अगर हिदायत मांगते शायद अल्लाह हिदायत दे देता। और फिर वही हुआ जो मांगा। फाखजत हुमुर वजफा, आखिरकार एक दिल दहला देने वाली आफत ने इनको आ लिया और वह अपने घरों में ऊंधे पड़े के पड़े रह गए और सालेह ये कहते हुए इनकी बस्तियों से निकल गए। आप भी इस दर्द को महसूस कीजिएगा। ऐ मेरी कौम, मैंने अपने रब के पैगाम तुझे पहुंचा दिए, मैंने तेरी बड़ी खैर ख्वाही की, मगर मैं क्या करूं, तुझे अपने खैर ख्वाह पसंद ही नहीं। आज भी ऐसा ही है। और अगले नबी जिनका पैगाम आज के दौर में आम करने की बड़ी ज़रूरत है, और वो हजरत लूत। कौम होमोसेक्सुअल थी, हम जिन्स परस्ती, और लूत को हमने पैगंबर बनाकर भेजा। फिर याद करो जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम ऐसे बेहया हो गए हो कि वो फुखश काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया? क्या औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो? हकीकत यह कि तुम बिल्कुल ही हद से गुजर जाने वाले लोग हो। मगर उसकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था कि निकालो इन लोगों को अपनी बस्तियों से, बड़े पाकबाज बनते हैं ये। आखिरकार हमने लूत और उसके घर वालों को, बजुज उसकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में थी, बचाकर निकाल दिया और इस कौम पर बरसाई एक बारिश। फिर देखो इन मुजरिमों का क्या अंजाम हुआ। कौन सी बारिश थी? पत्थरों की बारिश। सर के रास्ते पत्थर जिस्म में जाते और उन पे उनके नाम भी लिखे हुए थे, और जिस्म से गंदगी के रास्ते निकल आते, क्योंकि इस गंदे फेल का आगाज सोच से होता है और शर्मगाह पे रुकता है। सोच सीधी रखें, बाकी काम सीधे होंगे। इंशाल्लाह हम किसी जगह, जहाँ बहुत जगह ये वाक़ आएंगे, तो एक दिन सिर्फ इस पे बात करेंगे, क्योंकि आज के दौर का एक बहुत बड़ा फितना है ये। और आखिरी किस्सा जो अगले पारे में पूरा होगा, वो कौम मदियन का है। पैसे वाली कौम थी, कारोबारी लोग थे। हज़रत शुएब ने जब इनके माली मामलात पे तनकीद की तो ये गुस्से में आ गए और मदियन वालों की तरफ, हमने इनके भाई शुएब को भेजा, उसने कहा, ऐ बिरादराने कौम, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की साफ रहनुमाई आ गई, लिहाजा वजन और पैमाने पूरे करो, लोगों को इनकी चीज़ों में घाटा ना दो, नाप तोल में कमी करते थे, और ज़मीन में फसाद बरपा ना करो जबकि इसकी इसलाह हो चुकी, इसी में तुम्हारी भलाई है अगर तुम वाकई मोमिन हो, और ज़िंदगी के हर रास्ते पर रहज़न बनकर ना बैठ जाओ कि लोगों को खौफ सदा करने और ईमान लाने वालों को अल्लाह के रास्ते से रोकने लगो और सीधी राह को टेढ़ा करने के दर पे हो जाओ। याद करो वो ज़माना जबकि तुम थोड़े थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें बहुत कर दिया, और आंखें खोल कर देखो दुनिया में मुफसिदों का क्या अंजाम हुआ। अगर तुम में से एक गिरोह इस तालीम पर जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ ईमान लाता है और दूसरा ईमान नहीं लाता, तो सब्र के साथ देखते रहो यहाँ तक कि अल्लाह हमारे दरमियान फैसला कर दे। वहुवा खैरुल हाकिमीन, और वही बेहतरीन फैसला करने वाला है। आज पहली दफ़ा कौमों के किस्से पढ़े हैं, इसलिए सिर्फ कानों से टकराए हैं। इंशाल्लाह आगे जहाँ जाएंगे इनमें बहुत सारे सबक हैं, और ख़ास तौर में आज के दौर के फितनों में इधर से गाइडलाइन मिलती है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें अमल वाला बना दे। इंशाल्लाह ताला आपको जो चेकलिस्ट जाएगी घर में वो आप देख लीजिए। आयत तदब्बुर हम देख चुके, हदीस हम पढ़ चुके, और इसके बाद अगर आप देखें तो एक बहुत प्यारा इमेज है आज आपके सामने। हमने आज पढ़ा था वमन काना मैतन फाहयी ना हो। इस तस्वीर को अगर आप इसका प्रिंट आउट अच्छा सा बना के देखें, कुरान इस तरह हमारे दिलों पे असर करता है कि जैसे बारिश पड़ती है तो मुर्दा ज़मीन जिंदा होती है, इस तरह कुरान हमें जिंदा करता है। आप इस तस्वीर को देखें, मैंने रात को इसको बड़ी देर देखा तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं आप लोगों के दिलों का क्या हाल है, तो इसको एक इमेजिनेशन बना के सोचिए और अपने दिल को चेक करें कि मेरा दिल कितना को जिंदा हो रहा है इस कुरान के साथ। आज की दुआ सब मिलके पढ़ते हैं, आप लोग भी दोहराएं साथ ही, हम सब एक साथ पढ़ते हैं, पढ़िए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ए हमारे रब, हमने अपना बड़ा नुकसान किया, सच जिंदगी ज़ाया कर दी, और अगर आप हमारी मग़फ़रत ना करेंगे और हम पर रहम ना करेंगे तो वाकई हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल, छोटी छोटी नेकियों को इख्तियार करना है। आज आपको थोड़ी सी सोच मिली, कल तक और भी ढूंढिएगा। और टाइम वेस्टर्स क्या हैं? कसरत से बोलना, सुखरूफल कौली गुरूरा। आज सारा दिन आपने कोशिश के साथ कम बोलना है। मेरा ले कल आपके बच्चों के थैंक यू लेटर आएंगे मेरे पास कि हमारी अम्मी को यही पैगाम दे दें, और शौहर तो बड़े ही खुश होंगे। आज कम बोलिए, कल तक गिन के आइए मैं आज कितनी दफ़ा बोली, ठीक है? कसरत से नहीं बोलना, खामोशी अच्छी होती है। और काबिले तकलीद शख्सियत नूह अलैहिस्सलाम, कितनों को हजरत नूह पे रश्का रहा, और अपने वक्त में तो डांट खाई उन्होंने, तो अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।